أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ 23rd آڈیو ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے. جب یہ ڈرگ ایڈک بچے کا واقعہ ہوا کہ یہ لائٹ بول پر الیکٹریسٹی کے شوق سے مر گیا، تو پھر مجھے لگنے لگا کہ شاید وہاں پر جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس میں سے کئی ایسے چیزیں ہیں جو آئندہ میں ہونے والی ہیں. لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آئندہ میں ہونے والی ہے وہ میں وہاں دیکھ پا رہا تھا. اس لیے میں ایک عالم دین کے پاس گیا اور یہ سارا مطلب ان کے سامنے بیان کر دیا اور کہا کہ میں نے کئی ایسے چیزیں دیکھی ہیں جو ابھی تک ہوئے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس عالم میں جب تم وہاں پہنچے، کیونکہ وہاں زمان نہیں تھا، اس لیے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں مکاشفہ ہوئی اور وہاں پر تمہیں بہت سارے اتفاقات جو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں وہ اس سے تمہیں آگاہی ملی ہے، کیونکہ وہاں زمان اور مکان اصلاً مترا نہیں ہے. جب انہوں نے یہ بتایا تو اس کے بعد پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے جو ہمکار اور دوست تھے جو ابھی تک دفتر میں تھے اور شہید نہیں ہوئے تھے، یہ آئندہ میں شہید ہونے والے ہیں. ایک یا دو ہفتے ہی گزرے تھے، میری حالت تھوڑی بہتر ہوئی تھی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. میں بہت زیادہ ناراحت اور غمگین ہو گیا تھا، لیکن پھر مجھے میرے چاچا کی بات یاد آئی کہ انہوں نے اس باغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک باغ میرا ہے اور وہ دوسرا باغ تمہارے بابا کا ہے، اور بہت جلدی ہی تمہارے بابا ہم سے ملیں گے. پھر کچھ دن بعد میں ہمارے گاؤں چلا گیا جہاں پر میرا بچپن اور نوجوانی گزری تھی، اور وہی مسجد جہاں پر ہم ہمیشہ نماز پڑھتے تھے وہاں چلا گیا. اور جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا، مجھے وہ ساری باتیں اپنے بچپن کی اور نوجوانی کی یاد آنے لگی، اور فوراً اس کے بعد مجھے وہ صحنہ یاد آنے لگا جہاں پر ایک وہ پیر مرد تھا، یعنی وہ بوڑھے صاحب تھے، جنہوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی اور جس وجہ سے انہیں وہ تہمت کا جرمانہ یا بھرپائی کرنے کے لیے ایک حسینیہ جو انہوں نے وقف کیا تھا وہ مجھے دینا پڑا تھا. وہ ساری باتیں مجھے یاد آنے لگی، تو میں نے سوچا چلو اس معاملے کو بھی بررسی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس معاملے میں کتنی سچائی ہے. اگرچہ مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ جیسے دوسری باتیں جو گزری ہیں وہ سب حقیقی ہیں اور واقعی ہے، یہ بھی واقعی ہے، لیکن پھر بھی چاہتا تھا کہ تھوڑی تحقیق کروں، کیونکہ اس بوڑھے صاحب بوڑھے جناب کی صورت میرے آنکھوں کے سامنے تھی جب انہیں یہ حسینیہ مجھے دینا پڑ رہا تھا. تو وہ جس شدت سے ناراحت تھے اور افسوسناک تھے، ان کا چہرہ ابھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے تھا. وہاں جو کچھ بوڑھے افراد بیٹھے تھے، میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا، امو جان، کیا فلان شخص تمہیں یاد ہے جو تقریباً 4 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا؟ تو ان بوڑھے صاحب نے جواب دیا اور بہت ساری دعائیں دینے لگے. کہنے لگے، ہاں ہاں، ہم اس شخص کو جانتے ہیں، خدا اس شخص کی قبر کو نورانی کرے. کتنا نیک انسان تھا، کتنا اچھا انسان تھا، کئی ایسے کام اس نے کیے لیکن کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوئی. کتنے نیک کام اس نے انجام دیے اور کسی کو آج تک اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. ان جیسے افراد آج کل اس دنیا میں کہاں ملتے ہیں، بہت ہی کم اس طرح کے افراد ہیں. تو میں نے کہا، ہاں آپ درست فرماتے ہیں. اچھا بتائیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان صاحب نے اپنی زندگی میں اس شہر میں کہیں کچھ مسجد یا حسینیہ وقف کیا ہوگا؟ تو اس بوڑھے جناب نے جواب دیا، کہا نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن فلانی شخص ہے جو اس شخص کا بہت نزدیکی دوست ہے اور اس کی ساری باتیں جانتا ہے، شاید وہ تمہیں کچھ رہنمائی کر سکے اور بتا سکے کہ کوئی مسجد یا حسینیہ انہوں نے وقف کیا ہے یا نہیں. دیکھو یہی مسجد میں بیٹھے ہوئے. تو میں نماز پڑھ کر ان شخص کے پاس چلا گیا اور ذکر خیر کرنے لگا، اور مرحوم کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلان شخص اس شہر میں کوئی وقف کیا ہوگا؟ تو وہ دوسرے بوڑھے جناب نے کہا، ہاں انہوں نے وقف تو کیا، خدا انہیں رحمت کرے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس بارے میں جان پائے یا کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر ہو، لیکن اب کیونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے، میں یہ تمہیں بتا سکتا ہوں. انہوں نے اپنے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کے اس دائیں طرف جو حسینیہ دیکھ رہے ہو، یہ وہی حسینیہ ہے جسے انہوں نے بنایا ہے. तुम नहीं जानते ये हुसैनिया कितना खैर व बरकत वाला हुसैनिया है, यहाँ पर कितनी आज़ादारी है और कितनी नेक काम अंजाम होते हैं। देखो अभी हम खुद यहाँ पर बनाई का काम कर रहे हैं, तामीर का काम कर रहे हैं, और ये बीच की दीवार तोड़ रहे हैं ताकि हुसैनिया और मस्जिद को मिलाकर एक कर दें, ताकि नमाजियों की तादाद जो बढ़ रही है हुसैनिया में मुलहक हो सके और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकें। बस फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, जो मेरे दिल में सवाल था उसका जवाब मुझे मिल गया। नमाज के बाद मैं हुसैनिया में गया और वहाँ देख रहा था कि वहाँ के क्या हाल है। देख रहा था कि बहुत ही उम्दा हुसैनिया था और बहुत ही खैर व बरकत वाला हुसैनिया था। तो फिर वहीं पर मैंने नियत की और हुसैनिया को उस शख्स को वापस लौटा दिया, और उस शख्स ने जो मुझ पर तोहमत लगाई थी उसे मैंने माफ़ कर दिया, ताकि वो तोहमत मेरे गर्दन पे बाकी ना रहे और हुसैनिया उसे वापस मिल जाए। रात में फिर मैं अपनी हमसर के साथ बैठकर बात कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर मैंने देखी उनसे बता रहा था और कई चीज़ें डिस्कस हो रही थी। फिर मैंने मुस्कराते हुए कहा कि वहाँ जब मैं था तब मुझसे कहा गया कि क्योंकि तुम्हारी जोजा तुम्हारे लिए दुआ कर रही है और जो 4 महीने की बेटी उनके रहम में है वो भी दुआ कर रही है, तो इसलिए तुम्हारी शफ़ाअत की जा रही है और तुम्हें वापस भेजा जा रहा है। तो मैंने अपनी जोजा से कहा कि अगर ये सच निकला कि ये जो औलाद होगी अगर वो बेटी होगी तो ये एक और निशानी है जिससे पता चलेगा कि वो वहाँ पर जो जो इत्तेफाक हुआ था वो हकीकी था और सच था। फिर उसी साल के आखिर में मैं साहिब औलाद हुआ और ये औलाद बेटी निकली। ये सब मतालिब को छोड़ते हुए एक ऐसी चीज़ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वो था कब्रिस्तान में जाना, क्योंकि जब से मैं वहाँ से लौट कर आया था जब भी कब्रिस्तान में जाता तो वहाँ से बहुत ही हौलनाक और वहशतनाक आवाज़ें आती थी, बहुत दिल हुरे होता था, डर लगता था, इसीलिए मैं कब्रिस्तान में जाना बंद कर दिया था। लेकिन जब भी शहदा की कब्र के पास जाता तो वहाँ बहुत आराम और बहुत सन्नाटा और बहुत ही आरामदायक माहौल होता था, वहाँ कोई चीख और वहशतनाक आवाज़ें नहीं आती थी। फिर जब भी मुझे कब्रिस्तान जाना होता तो मैं सिर्फ जुमे की सुबह वहाँ चला जाता और अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ देता। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलूँ, वो ये कि जब मेरे किताब नामे आमाल का हिसाब किताब हो रहा था तो आखिरी लम्हात में मैंने देखा कि मुझे कितनी उम्र और कितनी मोहलत दी जा रही है। मैंने देखा कि मुझे चंदीन साल जो मोहलत दी गई थी वो चंद साल अब ख़त्म हो चुके हैं और अभी जो मेरी ज़िंदगी चल रही है ये वो चंद साल से ज़्यादा है। लेकिन मुझसे बताया गया था कि जो भी आमाल तुम नेक अंजाम दोगे और सिले रहम करोगे और खुदा की राह में खालिसाना अमल करोगे ये साल और ये घंटे तुम्हारी उम्र में हिसाब नहीं किए जाएंगे, और इसीलिए मैं जो जो नेक आमाल करता रहा शायद उनका हिसाब नहीं किया गया, इसलिए अभी भी मैं ज़िंदा हूँ और मेरी ज़िंदगी चल रही है। इंशाल्लाह आगे का मतलब अगले दर्स में बयान किया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये 24th ऑडियो है इस किताब के, 3 मिनट कयामत के। ये जनाब कहते हैं कि ये जो चंद वाक़े गुजरे हैं इसकी वजह से मुझे यकीन हो गया था कि मेरे दोस्त वाकयान हकीकत में शहीद होने वाले थे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात ये थी कि इस दौरान ज़मान में कोई जंग नहीं थी, कोई दुश्मन के साथ दरगीरी भी नहीं थी, तो मैं कैसे साबित करूं कि ये कुछ मेरे दोस्त जो दफ्तर में काम करते हैं ये शहीद होने वाले हैं। इसीलिए मैंने किसी से कुछ ना कहा, लेकिन हर दिन मैं चाहता था कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताऊं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये शहीद होने वाले हैं। तो मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि जो लोग कुछ ही दिनों बाद शहीद होने वाले हैं उनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात करूं, और जब भी मैं उनसे मुलाकात करता तो मेरे अंदर एक अजीब सी हयाजान और एक एनर्जी आ जाती कि मैं कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो कल शहीद होने वाले हैं और खुदा की राह में शहीद होकर शहदा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन क्या होने वाला है, कैसे शहीद होने वाले, ये नहीं जानता था। बस दिल में सोच रहा था क्या कोई जंग होने वाली है कि ये लोग शहीद होंगे। बस मेरे ऑपरेशन के 4 महीने ही हुए थे कि हमारे दफ्तर में और इदारे में ऐलान किया गया कि जो लोग चाहते हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के हरम की हिफाजत करे, उसकी दिफा करे, उसको प्रोटेक्ट करे, वो अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरे दोस्तों और कलीग्स के बीच में एक नया नया जोश आ गया। सब अपना नाम लिखवा रहे थे, मखसूसन जिनके बारे में मैं सोच रहा था कि ये लोग शहीद होने वाले हैं, और जिनको मैं वहाँ देख चुका था कि ये लोग शहीद होने वाले हैं, उन सब ने अपना नाम दिखाया था। मैंने भी बहुत कोशिश की, यहाँ वहाँ हाथ पाँव मारे, और आखिरकार मेरा नाम भी रजिस्टर किया गया। फिर सबके साथ मेरी भी ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग सब सूर्या की तरफ निकल चले, यानी सीरिया की तरफ निकल चले। सीरिया में जो आखिरी शहर था जिसे आज़ाद कराना था, जो कि हलब था, उसे हमें आज़ाद कराना था, उसको हमने चारों तरफ से घेर लिया था, और दुश्मन की जो टीम थी इनका इर्तिबात भी हमने बाहरी ममालिक के साथ कट कर दिया था, तोड़ दिया था। तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था मगर ये कि ये या तो अपने आप को हमारे हवाले कर दें या फिर यहाँ से भाग जाए। लेकिन किसी न हाल हमें हलब को पूरी तरह से आज़ाद कराना था। बस तमाम रास्ता मैं बार बार खुदा से यही दुआ कर रहा था कि खुदाया मुझे ये मुदाफ़ान हरम के साथ, ये इनके कारवान के साथ, मुझे भी शहदा के साथ मुलहक कर दे। बस अब मेरे दिल में इस दुनिया के लिए कोई आरजू नहीं रही, मगर ये कि इस दुनिया में मुझे मौका मिले कि मैं खुदा की रिजायत के लिए कोई काम अंजाम दूँ। मैंने वहाँ देखा था शहदा का क्या मकाम है, उनकी क्या हस्ती है, उनको क्या जायगा दी गई है। इसलिए मेरे दिल में सिर्फ यही आरजू थी कि मैं जितना जल्दी हो सके शहीद हो जाऊँ, और इन सब के साथ शहीद होकर वहाँ बारगाह इलाही में मुलहक हो जाऊँ। जो जो काम अंजाम देने थे मैंने सब अंजाम दे दिए, वसीयतनामा भी लिख दिया, अपनी विल भी लिख दी, और हर वो काम जिसे मुझे लग रहा था कि मेरे जो पिछले हक़ उन्नास है उन्हें अदा करना है, वो सब मैंने अदा भी कर दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की मदद से मेरे पूरे काम हल हो चुके थे, बस जाने की तैयारी थी। ये भी बताता चलूँ कि ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ जो हुआ और मेरे नामे आमाल का जो हिसाब किताब मेरे साथ हुआ था, जब मैं ऑपरेशन थिएटर से वापस आया तो मेरे रफ्तार और अखलाक पूरी तरह बदल गए थे। यानी मैं अपने आमाल को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल था और बहुत ज़्यादा मुराकिब था। इस बात का ख्याल रखता था कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे, या किसी को अजियत हो, या कोई मुझसे नाराज़ या नाराहत हो जाए, या कोई हक़ उन्नास मेरी गर्दन पर ना आ जाए। वो पहले जैसे मजाक करना, हंसी मजाक करना, दूसरों को सताना, छेड़छाड़ करना, किसी को अजियत करना, ये सब तो भूल ही जाओ। मैं बल्कि इतना केयरफुल हो गया था कि अपने अल्फाज और अपने बातों पर भी ख्याल रखने लगा था। बस मिलिट्री ऑपरेशन के एक दो रात पहले हम सारे दोस्त जो ऑफिस में काम करते थे वहाँ के इदारे में और दफ्तर में, वो सारे जम हो गए थे, बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तभी किसी उनमें से किसी ने एक ने कहा कि मैंने सुना ऑपरेशन थिएटर में तुम्हारी हालत मुर्दा हो गई थी और डॉक्टरों ने तुम्हें मुर्दा ऐलान कर दिया था, फिर कुछ मुद्दत बाद तुम लौट आए, तो बताओ वहाँ क्या हुआ। और सब बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे थे कि मैं बताऊँ जो आलम बरज़ख में देखा था वो उन सबको बता दूं। लेकिन मैंने पहले एक दो लोगों को ये बातें बताने की कोशिश की, बहुत कम, बहुत थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और उन्होंने ये बातें नहीं मानी। तो तब से मैंने सोच लिया था कि ये बातें मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसलिए ये जितना भी इसरार कर रहे थे मैंने इनकी बातें नहीं सुनी और इन्हें कुछ नहीं बताने का फ़ैसला किया। लेकिन जवाद मोहम्मदी, सैयद याहिया बराती, सज्जाद मुरादी, अब्दुल महदी काज़मी, बिरादर मुर्तज़ा रिज़ा व शाह सेनाई और दूसरे अफराद जो मेरे साथ थे, इन्होंने मुझे अकेले एक रूम में ले गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसरार करने लगे कि मैं वो सारी बातें इन्हें बताऊँ। फिर मैंने भी इन्हें वहाँ की कुछ बातें बताई और वो बातें सुनकर उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, जैसे वो पूरी तरह बदल गए। मखसूसन हक़ुन्नास के मामले में जब उन्होंने हक़ुन्नास की बातें सुनी तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। कुछ दिन बाद हम एक आर्मी ऑपरेशन में चले गए और उस ऑपरेशन के दौरान, उस लड़ाई के दौरान मैं बहुत ज़ख्मी हो गया था और मैं वहाँ गिर गया था। ज़ख्म मेरा बहुत डीप नहीं था, ऊपरी ज़ख्म था, लेकिन मैं एक ऐसी जगह फंस गया था जहाँ पर दुश्मन की गोलियाँ चल रही थी, और मैं ऐसी हालत में था कि मैं वहाँ से हिल भी नहीं सकता था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आ सकता था। बस मैं वहाँ लेटा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि अभी दुश्मन की एक गोली आएगी, मुझे लगेगी और मैं शहीद हो जाऊँगा। तो मैंने शहादतें पढ़ लिए और मैंने सारी तैयारी कर ली थी कि बस अब शहीद होना है। ऐसे खतरनाक हालत थे। अचानक से अब्दुल मेहदी काजमी और जवाद मोहम्मदी अपने आप को खतरे में डालते हुए वहाँ दौड़े दौड़े आए और मुझे जल्दी से खींच कर वहाँ से ले गए और वहाँ पर एक महफूज जगह पर पहुँचा दिया। उनके इस काम से मैं बहुत ज़्यादा नाराहत हो गया था और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। मैंने कहा, ये तुमने क्या किया? वहाँ क्यों आ गए? कितना बड़ा खतरा था, हम सब की जान जा सकती थी। वो तो मुझे मारने ही वाले थे, शायद तुम दोनों को भी मार देते, तुम्हारी जान भी खतरे में चले जाती। क्यों तुम वहाँ पर आ गए? तो जवाद मोहम्मदी कहने लगा कि नहीं, तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हें हमें सब कुछ बताना हो गया जो वहाँ हुआ था। आलम बरजख में जो जो तुमने देखा वो सब कुछ हमें बताना होगा। फिर कुछ दिन बाद ये सारे लोग मुझे वापस एक रूम में ले गए और मुझसे कहने लगे कि वहाँ जो कुछ हुआ था सब कुछ बताओ, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। फिर मैंने एक एक करके इनके चेहरों की तरफ निगाह की और फिर कहा कि तुम में से कुछ लोग, बल्कि तुम में से अक्सर लोग शहीद होने वाले हैं। एक अजीब सन्नाटा छा गया था कमरे में, सब खामोश थे, लेकिन मेरी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे कि वो चाहते थे कि मैं और आगे बताऊं और बिल्कुल चुप ना रहूं। मैंने वहाँ पर जो भी देखा था सब कुछ इन्हें बता दिया पूरे डिटेल के साथ और फिर अपने लिए थोड़ा सा परेशान था कि ना हो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सारे शहीद हो जाए और मैं पीछे रह जाऊँ। इंशाल्लाह कि ऐसा ना होगा, मैं भी इनके साथ ही शहीद हो जाऊँगा। जवाब मुझसे अलग अलग सवाल पूछता जाता और इसरार करता जाता और मैं भी जवाब देता जाता। फिर मुझसे पूछा कि बताओ वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ काम आने वाली है जो हमारी वहाँ मदद हो सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा, फिर तुम्हारी नियत की बररेसी की जाएगी और नियत को देखा जाएगा कि तुमने क्या खुदा के लिए और परवरदिगार के लिए खालिसाना एक काम को अंजाम दिया है या तुम्हारी नियत में खोट है। और इसके बाद फिर जो काम भी तुम खुदा के लिए करोगे और खुदा के बंदों के लिए करोगे वो वहाँ बहुत काम आने वाली है। अगले दिन ईरान के किसी ऑफिशियल ने एक बयान दिया और ईरान की आर्मी और दूसरे निज़ामी अफसरों के बारे में कुछ बयान दिया, जिसकी वजह से गर्ब के लिए, मखसूसन वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, एक मौका बन गया था कि वो इस बात को अखबार में बहुत उछाल रहे थे। बहुत सारे लोग जो मुदाफ़े हरम थे, जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम की दिफा कर रहे थे, ये खबर सुनकर बहुत नाराहत हुए और ये खबर पढ़कर बहुत अफसोस करने लगे। फिर जवाद ने ये खबर मुझे दिखाते हुए, अखबार दिखाते हुए कहा कि देखो ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के बयान देते हैं और फिर कल जब ये मर जाएंगे तो इन्हें शहीद का लकब देकर इनका परचम बुलंद किया जाएगा। तो मैंने बहुत आराम से जवाद को कहा कि जवाद, मैंने इसकी मौत देखी है और मैंने देखा है कि ये किस तरह मरेगा और इसे किस तरह मौत वाकई होगी और इसकी कोई मदद नहीं की जा सकेगी। ये बड़े अफसोसनाक हालत में इस दुनिया से जाएगा, बल्कि इसकी मौत खुद ये साबित कर देगी कि ये किस तरह इमाम खुमैनी की नज़रिए से और शहदा के रास्ते से दूर था और इस्लाम की बातों से दूर था। कुछ दिन बाद फिर से हम एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। सब ने अपने ड्रेस पहन लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन लिए और सारे जो ज़रूरियात थे वो ले लिए, गोली, बंदूक, बारूद सब हमने ले लिया था। मैंने खुद को पूरी तरह शहादत के लिए तैयार कर लिया था। मैंने आरपीजी ले ली और ये मेरे दोस्त जिनके बारे में मैं जानता था कि शहीद होने वाले हैं, इनके बाजू मुलहक हो गया था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि इनके साथ रहूँगा तो बेहतर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब शहीद होने वाले हैं तो इनके तुफैल में मैं भी शहीद हो जाऊँगा। तकरीबन आधी रात थी, अभी तक हमारा सोल्जर्स का टोला हरकत नहीं किया था, जब तक जवाद मोहम्मदी मेरे पास आया और कहने लगा, चलो बस अभी जाना है अमलियात के लिए, ऑपरेशन के लिए अभी जाना है और मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया है और सेंसिटिव हो गया है और पूरे मंतके यानी पूरे रीजन की सिक्योरिटी लेवल्स को बढ़ा दिया गया है। और वो चाहता था कि मैं उस टोले के साथ ना जाऊं बल्कि किसी और के साथ जाऊं या उसके साथ चला जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि अरे ये लोग जो जाने वाले हैं इनमें से तो कई लोग शहीद होने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि मैं भी इनके साथ रहूं ताकि इनके तुफैल में या इनके साथ रहने की वजह से मुझे भी शहादत हासिल हो जाए। फिर दस्तूर आया उस टोले के लिए निकलने के, तैयारी करो। मैं भी तैयार हो गया था क्योंकि मैं जानता था कि ये सब शहीद होने वाले हैं और मैं चंद घंटे पहले से ही तैयार होकर वहाँ मुंतज़िर था क्योंकि मेरे अंदर शहादत के अलावा किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मैं चाहता था कि मैं पहला वो शख्स हूँ जो शहीद हो जाऊँ। अभी कुछ कदम ही ना चले थे इस टोले के साथ, जब तक जवाद मोहम्मदी अपनी मोटर बाइक लेकर मेरे पास आता है और बहुत ही सीरियस आवाज़ में कहता है, जल्दी गाड़ी पर बैठो, हमें जाना है, हमें दुश्मन को दूसरी तरफ से हमला करना है, ये लोग इस तरफ से जाएंगे और हम लोग उस तरफ से लाइन को क्रॉस करके दुश्मन पर हमला करेंगे। जितना सीरियसली उसने मुझे कहा, मैं भी उसकी बात मान गया और बहुत खुशी खुशी उसकी गाड़ी पर सवार हो गया और वो मुझे तेज़ी से लेकर दौड़ाने लगा। 10 मिनट तक तेज़ी से गाड़ी को भगाते हुए दूर ले जाकर उसने मुझे वहाँ उतार दिया और फिर आवाज़ लगाई, सैयद याहिया जल्दी यहाँ आओ। तो दौड़े दौड़े सैयद याहिया अपनी बाइक लेकर वहाँ पर पहुँच गया। तो सैयद याहिया से कहने लगा, इसे ले जाकर आगे पहुँचा देना। तो मैंने जवाद से कहने लगा, जवाद ये कहाँ है, दुश्मन कहाँ है, और हमारी नीरू कहाँ है, हमारे अफसर कहाँ है, हम कहाँ आ गए, कहाँ जंग कहाँ हो रही है। तो उसने मुझे मेरी आरपीजी थमाते हुए कहा, जल्दी ये आरपीजी लो और वहाँ आगे चले जाओ, वहाँ एक टीला है, बस उस पर तुम्हें जाना है और वहाँ से दुश्मन पे निशाना ताक कर आरपीजी चलाना है, जल्दी करो, देर मत करो। मैं भी सैयद याहिया के साथ तेज़ी से वहाँ चला गया और वहाँ पहुँच गया, और जब तक जवाद अपनी मोटरबाइक पर बैठकर वापस चला गया। वहाँ जब पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर ऐसी कोई तशवीश और गर्मा गर्मी नहीं है, सब लोग आराम से बैठे हुए। मैं बहुत ताज्जुब करने लगा और फिर मैंने चंद लोग जो वहाँ थे उनसे पूछने लगा कि दुश्मन कहाँ है, कहाँ से हमला करना है, कहाँ से उन पर टूट पड़ना है। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, ये लो बैठो और आराम से बैठो, ये हमारा डिफेंसिव पॉइंट है, यहाँ पर हमें सिर्फ नज़र रखना है दुश्मन की हरकत पे, यहाँ से कोई हमला नहीं करना है, यहाँ कोई जंग नहीं है। तब मुझे समझ आया कि जवाद मोहम्मदी ने क्या काम किया था। अगले दिन वो ऑपरेशन ख़त्म हो गया और मैं अपने टेंट की तरफ वापस आ गया। मुझे जवाद मोहम्मदी दिखा तो मैंने कहा, बताओ क्या कहूँ, खुदा तुम्हारे साथ क्या करे, क्यों तुमने मुझे वहाँ से दूर कर दिया, मैं उनके साथ जाता तो शहीद हो जाता, तुम मुझे कहाँ लेकर जाकर पहुँचा दिए, शहादत से दूर कर दिया। तो वो मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगा कि अभी तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम लोगों के लिए वो सब बताओ जो वहाँ हुआ है, उस 3 मिनट में तुमने बरज़खी आलम में जो जो देखा था ये तुम्हें लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि इस वक्त लोगों का ईमान क़यामत पे से उठ गया है, उन्हें उस बरज़ख के आलम पर ईमान नहीं रहा, वो अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे हैं जिनकी उन्हें ताकीद की गई थी, वो अहलुल बैत की बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें उन्हें बताना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसी जगह ले गया जहाँ पर तुम ख़तरे से दूर रहो और तुम्हारी जान अमान में रहे। लेकिन उस रात मेरे सारे दोस्त वहाँ पहुँच गए थे और दुश्मन पर हमला करने लगे थे, मेरी जान वहाँ अमान थी और मेरे दोस्त यहाँ दुश्मन से लड़ रहे थे, सज्जाद मुरादी, सैयद याहिया बराती के सबसे आगे थे, ये दोनों सबसे पहले शहीद हुए, और कुछ देर बाद मुर्तज़ा ज़ारे, उसके बाद शाह सिनाई और अब्दुल मेहदी, ये सारे एक एक करके शहीद होते गए, और कुछ ही देर बाद मेरे सारे दोस्त वहाँ शहीद हो गए। ये सारे लोग परवास करके शहदा में शामिल हो गए और बारगाह इलाही से मुलहक हो गए, और फिर कुछ दिन बाद जवाद मोहम्मदी भी शहीद हो गए और शहदा के साथ मुलहक हो गए। फिर जो ईरानी बच्चे थे इस्फहान के, सीरिया में जंग लड़ रहे थे, उन्हें वापस ईरान भेज दिया गया। मैं भी खाली हाथ सीरिया से वापस आ गया, मैं गया तो था जंग करने और शहीद होने, लेकिन खाली हाथ ईरान लौट गया, और मेरे दिल में सिर्फ आरजू रह गई, और दिल की गहराइयों में इस आरजू के साथ वापस आ गया जो मुझे सताती रही कि ऐ काश मैं शहीद हो जाता। इंशाल्लाह आगे का मतलब अगले दर्स में।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये 25th ऑडियो है इस किताब का, 3 मिनट क़यामत के, और ये आखिरी ऑडियो है इस किताब का। वो ऑपरेशन के बाद एक मुद्दत गुजर चुकी थी, और फिर मेरे दोस्तों की शहादत के बाद भी एक काफ़ी अरसा गुजर चुका था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं शहादत के नज़दीक पहुंच गया था लेकिन फिर भी वहां से खाली हाथ आ गया। मैं शहादत का जाम पी ना सका, लेकिन मेरे दोस्त सारे शहीद हो गए थे, और मैं जानता था कि क्यों मैं शहीद नहीं हो पाया। मुझसे कहा गया था कि अगर शहादत का शौक़ रखते हो तो हराम निगाह से बचना, हर हराम निगाह की वजह से शहादत 6 महीने पीछे चली जाती है। मुझे याद है कि जब हम सीरिया जा रहे थे तो जिस वक्त पर हमारी फ़्लाइट थी बिल्कुल उसी वक्त पर अंतालिया की भी फ़्लाइट थी। अंतालिया टर्की का एक शहर है, तो उसकी फ़्लाइट भी उसी वक्त पर थी।
और हम सब जब वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे तो कुछ नौजवान लड़कियां जो बिल्कुल नामुनासिब लिबास पहने हुए हैं वो आकर मेरी सामने वाली कुर्सियों पर बैठ जाती है और ना चाहते हुए मेरी निगाह उन पर पड़ जाती है। फौरन मैं वहाँ से उठता हूँ और दूसरी जगह जाकर बैठ जाता हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर फिर ये नामहरम लड़कियाँ मुझे ना दिखे। जितना भी मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे हवास को मैं पर्त करूँ और दूर रखूँ और उनकी तरफ मुतवज्जे ना हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरे दूसरे जितने दोस्त थे वो जाकर ऐसी जगह बैठ गए थे कि असलन उनके सामने कोई नामहरम आकर बैठ ही नहीं सकता था। कोई बहुत कोने की, दूर दराज कोने की कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे कि जहाँ कोई आकर बैठना पसंद नहीं करता। दोबारा फिर ये लड़कियाँ आकर मेरे सामने बैठ गई। शायद इन्हें लग रहा था कि मैं भी अंतालिया जा रहा हूँ, मुझे भी वो अंतालिया का मुसाफिर समझ रही थी, इसलिए वो आकर वहाँ बैठ गई। जो भी था, ऐसे लग रहा था कि मेरा ईमान और मेरा एतकाद दोनों का इम्तिहान लिया जा रहा है। जैसे कि शैतान चाहता है कि मुझे बताए कि अभी तक तुम तैयार नहीं हो शहादत के लिए। अगरचे मैं उनके नाज़ और नखरों के मुकाबले में कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था और बिल्कुल उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ाहिरन इस इम्तिहान से मैं बहुत अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ था। जो हमारे सारे दोस्त सीरिया में हमारे साथ थे, उनमें से और कई ऐसे लोगों को मैं जानता था जो बाद में शहीद होने वाले थे, क्योंकि मैंने भी उन्हें शहदा की सफ़ में देखा था। आलम बरज़ख में ये शहदा के साथ हिसाब किए गए थे। इनमें से एक का नाम था अली खादिम। अली खादिम एक बहुत ही सीधा सादा इंसान और बहुत ही नेक इंसान था और बहुत ही बाइखलास इंसान था। एयरपोर्ट पे जब हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे तो वो ऐसी जगह जाकर बैठा था कि वहाँ उसके मुकाबले में कोई नहीं बैठ सकता था। नामहरम तो दूर की बात, कोई और आकर बैठ ही नहीं सकता था। बहुत तंग जगह थी, वो खुद को ऐसी हराम निगाहों से बचा रहा था। सीरिया में जब हम जंग में मशगूल थे तो अली भी वहाँ पर था और वो भी ज़ख्मी हो गया था और हम सब के साथ ईरान वापस आ गया था। फिर मैं अपने आप दिल में सोचने लगा, अली भी बहुत जल्दी शहीद होने वाला है, लेकिन कहाँ और कैसे ये नहीं जानता था। और एक दोस्त जिसको मैंने शहदा की सफ़ में देखा था, उसका नाम था इस्माइल करीमी और वो ईरान में ही था। बल्कि ये बता दूं कि वो असलन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम के दिफा के लिए आया ही नहीं था, मुदाफियाने हरम में से था ही नहीं। वो अभी तक ईरान में ही था और वहीं के दफातर में काम कर रहा था। लेकिन मैंने उसे बरज़ख़ के आलम में शहदा के सफ़ में देखा था और उसका बिना कोई हिसाब किताब किए उसे बरज़ख़ की बहिश में भेज दिया गया था। मैं और इस्माइल बहुत अच्छे दोस्त थे। साल 97 यानी तकरीबन आज से 1 साल पहले वो मुझसे मिलने आया था और तकरीबन 1 घंटा बैठकर हम बात करते रहे। और फिर जब इस्माइल जाने लगा, खुदाफिजी करने लगा, तो उसने बताया कि हम एक मामूरियत के लिए, एक ऑपरेशन के लिए बॉर्डर वाले एरिया में जाने वाले हैं। फिर मेरे दोस्त सिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ निकल गए। वहाँ के कुछ मसाइल थे जिसे हल करने के लिए और डील करने के लिए यहाँ से कुछ लोगों को भेजा जा रहा था। फिर अगले दिन मैं अली के बारे में पूछने लगा तो पता चला कि वो भी सिस्तान चला गया। अचानक से मुझे एहसास हुआ, कहीं ऐसा तो ना हो कि सिस्तान और बलूचिस्तान से शहादत का दरवाज़ा खुल जाए और ये लोग वहाँ जाकर शहीद हो जाए। फिर मैं भी कोशिश करने लगा और जल्दी मैंने मेन ऑफिस को लेटर लिखा, हेड ऑफिस को, और इसरार करने लगा कि मुझे भी इजाज़त दे, मैं सिस्तान और बलूचिस्तान चला जाऊँ। लेकिन मेरी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया और मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं वहाँ जा सकूँ। थोड़ा वक्त गुजर चुका था, मैं कंटिन्यूसली मेरे दोस्तों के साथ कनेक्शन में था। मैं बार बार उनसे पूछताछ करते रहता था कि वो कैसे हैं, क्या हाल है और क्या अमलियात कर रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर बहमन माह के 97 साल में, यानी आज से तकरीबन 6 महीने पहले, एक खबर आई। खबर बहुत छोटी थी लेकिन मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा। एक बस में जो लोग अपनी मामूरियत और ऑपरेशन और जिम्मेदारी को तमाम कर कर वापस लौट रहे थे, तो वहाबी टोले ने उस बस पे हमला कर दिया और उस बस में बैठे तमाम लोग शहीद हो गए। अगले दिन मैं मेरे दोस्तों के बारे में मालूमात करने की कोशिश कर रहा था, जानना चाह रहा था कि वो सिस्तान और बलूचिस्तान जो गए थे वो कहाँ हैं, मखसूसन अली खादिम और इस्माइल करीमी। पता चला अगले दिन जो लिस्ट छपी थी जिसमें शहदा के नाम लिखे हुए थे, पता चला उसमें अली खादिम और इस्माइल करीमी का भी नाम था। फिर मैं भी इन मेरे दोस्तों की शहादत के बाद मैं भी ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ चला गया। वहाँ पर एक मुद्दत तक वहाँ के अमलियात में शामिल रहा और वहाँ पर मशगूल रहा, लेकिन वहाँ शहादत की कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन मैंने दो सिपाहियों को देखा जो हमारे बख्श में आए हुए थे, हमारे स्टेशन पे आए हुए थे। उन्हें देखकर मेरी हालत बदल गई। मैंने देखा कि ये दो लोग भी उनमें से थे जिनको मैंने आलम बरज़ख़ में शहदा की सफ़ में देखा था। ये भी वो लोग थे जिनका हिसाब किताब किए बिना सीधे सीधे बरज़ख़ी बहिश की तरफ भेज दिया गया था। ताकि मुझे पूरा इत्मीनान हासिल हो जाए, मैं उनके पास गया और पूछने लगा, आप दोनों का नाम मोहम्मद है क्या? उन्होंने कहा हाँ। फिर वो वेट कर रहे थे कि मैं कोई और बात करूंगा और बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ये बात और उनके उनका जवाब सुनकर मेरी हालत और बदल गई। फिर मैं उनसे खुदाफिजी करके वहाँ से निकल गया। फिर एक दिन मैं हमारे इदारे के नमाज खाने में मैंने दो जवान को देखा, वहाँ बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुझे याद आ रहा था कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। फिर मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें सलाम किया, उनके अहवाल पुरसी की, और फिर मैं उनसे कहने लगा कि मैं नहीं जानता मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत ज़्यादा आशना और जाना पहचाना लग रहा है। क्या तुम मुझे अपना फैमिली नेम बता सकते हो ताकि मैं तुम्हारा सरनेम सुनूँ तो मुझे याद आ जाए कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? तो पहले वाले ने अपना सरनेम बताया। जैसे ही मैंने उसका सरनेम सुना, मेरे सूरत का रंग बदल गया, मेरे चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि मुझे वही ऑपरेशन थिएटर की सारी बातें याद आने लगी। और फिर फौरन मैंने उनके बाजू जो शख्स बैठा हुआ था जवान, उससे कहने लगा कि तुम्हारा नाम भी शायद फिर हसन आगा होगा, सही कह रहा हूँ? उसने कहा हाँ। लेकिन फिर से इन दो जवानों की बातें सुनकर और उनका जवाब सुनकर मेरे चेहरे का रंग बदल गया था और मेरी हालत बदल गई थी। मैंने उनसे खुदाफिजी की और वहाँ से चला गया। फिर मैं अपने जहन में टटोलने लगा कि और कौन कौन लोग थे जिनको मैंने वहाँ देखा था आलम बरज़ख़ में, शहदा के सफ़ में, और कौन ऐसे लोग थे जिन्हें मैं वहाँ देख चुका हूँ और यहाँ भी वो अभी ज़िंदा है। फिर मुझे पांच लोग ऐसे मिले जो पहले मेरे ही इदारे में, मेरे ही बख्श में काम करते थे, लेकिन अभी अलग अलग बख्श में चले गए और अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें वहाँ शहीदों की सफ़ में देखा था और वो पांच लोग एक साथ शहीद हुए थे। फिर कुछ और लोगों को मैंने देखा कि वो भी शहीद हुए थे। अगरचे वो 3 मिनट मेरे लिए बहुत सख्त थे और मैं उन्हें भुला नहीं सकता, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे सामने वो आ जाते हैं, वो लोग, या वो मौका आ जाता है, तो वो फिर सारी बातें मुझे याद आने लगती है। कुछ दिन पहले मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ अपने मेज़ पे काम कर रहा था, अचानक एक दोस्त वहाँ एक मसूल वहाँ पर आया और वो मुझसे कहने लगा, सलाम, कैसे हैं, ठीक हो, पहचाना मुझे या भूल गए? मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था ये कौन है। फिर उन्होंने खुद मुझे बताया कि 10 साल पहले मैं तुम्हारे साथ फलान इदारे में काम करता था, हम एक ही दफ्तर में काम करते थे, इतना जल्दी भूल गए? मैंने तुम्हारी वो किताब पढ़ी है, 3 3 मिनट कयामत के, जब मैंने पढ़ा तो मैं समझ गया था कि ये किताब तुम्हारे बारे में है, सच कह रहा हूँ ना? तो फिर मैंने जवाब दिया कि हाँ, सही कह रहे हो, ये किताब मेरे बारे में ही है। फिर उसने कहा कि मेरे एक रिश्तेदार ने तुम्हारी किताब पढ़ी, बहुत उन पर इसका असर हुआ, इतना ज़्यादा कि उन्होंने कई लाख रुपये जो रद्द मजालिम है वो उन्होंने अदा कर दिए ताकि उनकी गर्दन पे किसी का हक कुन्नास बाकी ना रहे या कोई बैतुल माल बाकी ना रहे, बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने वापस दिया है। फिर कुछ देर बात करने के बाद वो वहाँ से चले गए और मैं अपने फ़िक्र में मशगूल हो गया कि मैंने इसे कहीं और भी देखा है, अगर दफ्तर में था लेकिन बाद में मैंने इन्हें कहीं और भी देखा है। बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि ये भी उनमें से एक शख्स था जिनको मैंने आलम बरज़ख़ में देखा था, कि ये भी शहीद हुए थे और शहदा के सफ़ में मौजूद थे। और इस मतलब के साथ ये जनाब अपनी किताब को ख़त्म करते हैं, यानी ये जनाब अभी भी ज़िंदा है, वो सीरिया जा चुके हैं मुदाफे हरम के लिए, हरम की हिफाजत के लिए वो जंग कर चुके हैं, और अभी भी उनके दिल में शहादत का इश्क उसी तरह बाकी है और वो अभी भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें शहादत का दर्जा हासिल हो सके, क्योंकि वो देख चुके हैं और जान चुके हैं कि शहीद का मर्तबा क्या होता है और शहादत का दर्जा क्या होता है। मैं जानता हूँ कि आप लोग ये ऑडियो सुनने के बाद आप लोगों में, बहुत सारे लोगों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कई लोगों ने हमें सवाल लिखकर भेजा है, कई लोगों ने हमसे पूछा है कि अब हम क्या करें, हम हमारे पिछले हिसाब को कैसे मिटाएं, हम रद्द मजालिम को कैसे अदा करें, हम खुम्स कैसे पे करें और हम हमारे रफ्तार में कैसे चेंज लाएं। मैं जानता हूं कि ये ऑडियोज़ का आपके ऊपर काफ़ी असर हुआ है। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऑडियोज़ आप कहीं ना कहीं सेव करके रख लें, और जब भी एहसास होने लगे कि आपका ईमान थोड़ा डगमगा रहा है या आपका एतकाद कम हो रहा है या आपके आमाल में कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको लगे कि आपके पांव डगमगा रहे हैं, तो फिर से इन ऑडियोज़ को सुनिए ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए और वो बरज़ख का आलम आपके आँखों के सामने आ जाए, ताकि अगर शैतान या फिर हमारी नफ्स अम्मारा हमें भटकाने की कोशिश करे और हमें हमें वरगलाए कि हम दुनिया तलबी में लग जाए और दुनिया की चाहत में मशगूल हो जाए और हराम काम की तरफ बढ़े, तो वो बरज़ख का आलम हमारी आँखों के सामने आ जाए और हम वापस से होशियार हो जाए और किसी हराम काम में मुबतला ना हो और किसी गुनाह में मुबतला ना हो सके और शैतान के वरगले में ना आ सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस ऑडियोज़ को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वक्त निकाल पाएँ और इस ऑडियोज़ को सुन पाएँ।